दिन भर तारीख 8 जून दिन बृहस्पतिवार मैं हूं मोहनलाल शर्मा। पुलिस ने माना कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस की गोली से ही मौत हुई थी किसानों की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा,
मेरी जब तक सांस चलेगी किसानों के लिए काम करता रहूंगा, लेकिन कुछ अराजक तत्व प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं, उनसे हम सख्ती से निपटेंगे।
सहारनपुर हिंसा के सिलसिले में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण गिरफ्तार।
हिंसा के लिए उनके विरुद्ध कई केसेस दर्ज है और 30 केसेस में उनका नाम है, जो हिंसा हुई है सहारनपुर में जाती, तो हम लोग इनकी तलाश में थे।
नई संसद के लिए ब्रिटेन की जनता डाल रही है वोट। कार्यक्रम में होगी आपकी राय भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसान आंदोलन के बीच राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज किसानों से मिलने के लिए मंदसौर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वहां पर उन्हें और कुछ और कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर किसानों के हितों के बजाय अमीरों के हितों में काम करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। म्यांमार के रक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि कल सेना का जो विमान क्रैश हुआ था, उसमें सवार लोगों में से 29 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। विमान में 120 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें 8 बच्चे भी थे। ये विमान जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तब वो अंडमान सागर के ऊपर उड़ रहा था। इस विमान में कई सैन्य अधिकारियों के परिवार भी सवार थे। इस विमान को बनाने वाली चीनी कंपनी ने विमान के हादसे की वजह की जांच करने का भरोसा दिलाया है। ईरान के खुफिया विभाग के मुताबिक तेहरान में कल संसद और पूर्व धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी की मजार पर हमला करने वाले ईरान के ही थे, और ये लोग इराक और सीरिया में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े थे। मंत्रालय ने ये भी बताया है कि पांचों हमलावर मोसूल और रक्का में आईएस के ऑपरेशन में शामिल हुए थे और पिछले साल ही ईरान लौटे थे। आईएस ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली थी। तेहरान में हुए हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए पेरिस में आईफिल टावर की बत्तियां आज आधी रात को बुझा दी जाएंगी। वहीं ईरान की राजधानी तेहरान में हमले के लिए ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने सऊदी अरब और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। कल इन हमलों में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफान दुजारिक ने उम्मीद जताई है कि हमले के दोषियों को सजा मिलेगी।
The Secretary General strongly condemns the terrorist attacks on the mausoleum.
महासचिव ने तेहरान में आयतुल्ला रूहुल्ला खुमैनी की मजार पर और संसद पर हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ईरान और हमले में मारे गए लोगों और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी। चरमपंथ के खिलाफ सभी देशों को एकजुट होना चाहिए। ये थे स्टीफन दुजारिक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सऊदी अरब और अन्य अरब देशों से संबंध खत्म होने के बाद कतर अब रूस से मदद की उम्मीद कर रहा है। कतर के विदेश मंत्री इस हफ्ते के अंत में रूसी विदेश मंत्री से मिलने के लिए मॉस्को जा सकते हैं। बीबीसी संवाददाताओं ने बताया है कि रूस के हस्तक्षेप से अरब देशों के संकट के और उलझने की संभावना है। कुवैत पहले ही दोहा, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच तनाव कम करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, यमन समेत लीबिया ने कतर पर चरमपंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर संबंध काट लिए हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री अदल अल जुबैर ने कहा कि कतर को इस संकट को खत्म करने के लिए कदम उठाने होंगे। कतर को हम मित्र देश की तरह देखते हैं। कतर के लोग सऊदी अरब के लोगों के भाई हैं, लेकिन हम मानते हैं कि भाइयों और दोस्तों के साथ खड़े रहना चाहिए, चाहे वो सही हों या गलत। अगर वो सही कर रहे हैं तो बढ़ावा देना चाहिए, और गलत कर रहे हैं तो सही रास्ते पर चलने की सलाह देनी चाहिए। हमने कतर और इस क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा के हित में बड़े दुख के साथ ये कदम उठाया है। ये थे अदल अल जुबैर के शब्द। अमेरिका में पूर्व एफबीआई प्रमुख जेम्स कोमी कुछ ही देर में अमेरिकी सीनेट में इंटेलिजेंस कमेटी के सामने पेश होने वाले हैं। उन्हें हाल ही में पद से हटाया गया था। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार उनके प्रति वफादारी रखने के लिए कहा था, और रूस और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन के बीच संबंध की जाँच बंद करने को भी कहा था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला किसानों के हिंसक आंदोलन को लेकर चर्चा में है। मंदसौर में किसानों के आंदोलन के चलते हुई 6 किसानों की मौत के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज वहां पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रास्ते में ही हिरासत में ले लिया गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी अमीरों के कर्ज माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों के लिए उनके पास सिर्फ गोली है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हिंसा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सुनिए भोपाल से हमारे सहयोगी शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
मंदसौर में किसानों पर गोली का मुद्दा आज भी मध्य प्रदेश में छाया रहा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उदयपुर के जरिए सड़क मार्ग से मंदसौर पहुंचने की कोशिश की। पहले राहुल गांधी बाइक में सवार हुए और उसके बाद उन्होंने पैदल ही पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उन्हें कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ हिरासत में ले लिया गया। राहुल गांधी मारे गए किसानों के परिवार वालों से मिलना चाहते थे। राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर किसानों के मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने पत्रकारों से कहा,
नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 1,50,000 करोड़ रुपया माफ किया है, किसानों का माफ नहीं कर सकते, किसानों को सही रेट नहीं दे सकते, किसानों को बोनस नहीं दे सकते, किसानों को मुआवजा नहीं दे सकते, किसान को सिर्फ गोली दे सकते हैं, गोली।
वहीं मंदसौर में आज पुलिस ने कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी। यह ढील महिलाओं और बच्चों के लिए थी। मंदसौर में मंगलवार को किसानों पर पुलिस की फायरिंग के बाद 6 की मौत हो गई थी और उसके बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। कल प्रदेश में हुई हिंसा के बाद आज स्थिति काफी हद तक शांत रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार किसानों के साथ है, लेकिन उपद्रवियों के साथ सख्ती से पेश आया जाएगा।
मेरी सरकार किसानों की सरकार है, जनता की सरकार है। मेरी जब तक सांस चलेगी जनता के लिए काम करता रहूंगा, किसानों के लिए काम करता रहूंगा। अनेकों फैसले हमने अभी किसानों के हित में लिए। प्याज 8 रुपया किलो खरीदा जा रहा है, मूंग उड़द तुअर की खरीदी 10 जून से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हम प्रारंभ कर रहे हैं। एक नहीं अनेकों फैसले अभी अभी हमने किसानों के हितों के लिए लिए हैं। समस्या के समाधान के लिए बातचीत के माध्यम से मैं सदैव प्रस्तुत हूँ। चर्चा करके समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन कुछ अराजक तत्व प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं, उनसे हम सख्ती से निपटेंगे, उनके मंसूबे कामयाब ना होने दें।
प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह, जो अब तक पुलिस द्वारा चलाई गई गोली की बात को मानने से इनकार कर रहे थे, उन्होंने आज स्वीकार किया कि गोली पुलिस नहीं चलाई थी।
वह पुलिस की गोली से ही मृत्यु हुई है, ये जांच में स्पष्ट हुआ, प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ है और घटना दुखद है। शुरुआती जो सूचना थी वो शुरुआती सूचना ये थी कि पुलिस के द्वारा फायरिंग नहीं की गई, परंतु जब बाद में जानकारी प्राप्त की तो मैंने तत्काल बाद ही ये कहा था कि पुलिस की फायरिंग से ये मृत्यु हुई है, पुलिस की फायरिंग से ही किसानों की मृत्यु हुई है, ये मैंने उसी समय भी कहा था। तत्कालिक जो सूचना मिली थी उस समय अधिकारियों को भी शायद ये जानकारी नहीं थी, और इसलिए तत्कालिक जो सूचना मिली थी उस आधार पर हमने ये बात कही थी।
इधर किसान आंदोलन के 8वें दिन शाजापुर में किसान सड़कों पर आ गए। किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन किया और प्याज को सड़क पर डाल दिया। उन्होंने एक ट्रक को आग के हवाले भी किया, जिसके बाद उन्हें काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। उन्होंने पथराव करके SDM को भी घायल कर दिया। उसके बाद शहर में धारा 144 लगाई गई है। शुरह नियाजी, BBC न्यूज, भोपाल।
तो जैसा कि आपने सुना, जगह जगह किसान आंदोलन कर रहे हैं। वो कर्ज माफी के साथ साथ अपनी अन्य मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। हमारे सहयोगी सलमान रवि ने बात की भारतीय जनता पार्टी के किसान नेता विजय पाल सिंह तोमर से कि किसानों का आंदोलन और उनकी समस्याएं क्या हैं, उस पर बात की।
आप देख रहे हैं कि क्या हालत हो रही है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, किसान अपना सामान फेंक रहे हैं, दूध बहा रहे हैं, टमाटर सड़क पर फेंक रहे हैं। कृषि मंत्री जी किधर हैं?
देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसान आंदोलन आजादी से पहले भी हुई, चाहे वो बारदोली आंदोलन हो या चंपारण आंदोलन।
लेकिन मैं अभी कृषि मंत्री जी के बारे में पूछ रहा हूँ कि वो कहाँ हैं।
कृषि मंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। कृषि मंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में जो प्रयास किया है वो सराहनीय प्रयास है उनका।
इस पूरे दौरान में उनके ना कोई बयान आ रहे हैं, ना कुछ उनके बारे में पता चल रहा है कि वो कहाँ
हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट का विषय है। हमारे स्टेट गवर्नमेंट के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का बयान आ रहा है, उधर फर्नांडिस का बयान आया है, लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ, मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर सबसे अधिक किसानों के लिए काम किया है तो मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार ने किया है।
तो फिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है अगर काम हुआ है, अगर वहां पर क्यों किसान जो है अपने सामान को फेंक रहा है? आप न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो नहीं दे, आपने वादा किया कि हम ऋण माफ कर देंगे, तो आखिर सब निगाह लगा के बैठे हुए कि आखिर आप कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं?
हमने कर्ज माफी का वायदा उत्तर प्रदेश में किया था, जैसा किया था उसको पूरा किया है।
बाकी जगहों पर किसान जो है उनका क्या, वहां तो इलेक्शन थे समझ में आ रहा है?
नहीं नहीं, हम बता रहे हैं कर्ज माफी का स्टेट का विषय है, ये सेंटर ने नहीं किया, स्टेट गवर्नमेंट ने किया, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, लघु सीमांत किसानों का फसल ऋण माफ करने का काम। ये हमारे मध्य प्रदेश और वहां के महाराष्ट्र के चुनाव के घोषणा पत्र में नहीं था, वहां की सरकारों में नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी वहां की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, आप देखेंगे कि वहां पहले वो बोनस देते थे गेहूं खरीद पर, अब उन्होंने जो फसली ऋण है उसमें ब्याज तो ले नहीं रहे, जब वो जमा होता है 10% कम करके ले रही, उसकी भरपाई करने का काम किया। पिछले साल में इंदौर में गया तो एक प्रेस वालों ने मुझसे सवाल किया कि 6 रुपये किलो प्याज सरकार ने खरीदी और 3 रुपये किलो भेज रहे, नुकसान उठा रही है सरकार। मैंने कहा था मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री को, यदि 3 रुपये किलो नहीं मुफ्त में भी देनी पड़े, भाई सरकार इसलिए होती है किसान को मरने से बचाने के लिए।
उल्टा हो रहा है ना कि किसान की लागत अगर 6 रुपये आ रही है और उसको 3 रुपये मिल रहा है,
इसीलिए सरकार ने 6 रुपये खरीदा और 3 में बेचा, नुकसान उठाया, क्यों सरकार है इसलिए आम आदमी के लिए है ना, उनको बचाने के लिए 6 रुपये खरीदा था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जो आज ये कह रहे हैं कि शिवराज इस्तीफा दें, क्या उन्होंने किसी ने इस्तीफा दिया? उनको क्या नैतिक अधिकार है? आज ये घड़ियालू आंसू जो बहाने जले जाए हैं, नौटंकी कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं उनके राज के अंदर कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, येदियुरप्पा जी के टाइम पे 2 रुपये लीटर बोनस दूध पर दिया जा रहा था, क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने कर्ज 0% ब्याज पर ऋण दिया था, क्यों नहीं ये दे रहे? इन्होंने सारी सब्सिडी जो दी जा रही थी बंद कर दी। तो ये नौटंकी कर रहे हैं किसानों के हित की, ये किसान हितेशी नहीं, किसान विरोधी है, केवल ये अपनी राजनीति करने के लिए, रोटी सेकने के लिए जा रहे हैं।
किसानों के आंदोलन और उनके मुद्दों पर सलमान रावी बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के किसान नेता विजय पाल सिंह तोमर से। सहारनपुर में पिछले दिनों हुई हिंसा के कथित मुख्य अभियुक्त और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को आज उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। सहारनपुर में पिछले दिनों हुई जाति हिंसा के बाद से ही पुलिस चंद्रशेखर की तलाश कर रही थी। एक दिन पहले भी भीम आर्मी के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। चंद्रशेखर को कल यानी कि शुक्रवार को सहारनपुर की अदालत में पेश किया जाएगा। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
सहारनपुर में पिछले एक महीने से बने हिंसक माहौल के लिए कथित तौर पर सबसे ज्यादा जिम्मेदार बताए जा रहे भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण को यूपी पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन डलहौजी से गिरफ्तार किया। मेरठ जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद कुमार ने बीबीसी को इस बारे में विस्तार से जानकारी दी।
चंद्रशेखर हमारे यहाँ सहारनपुर में हिंसा के लिए उनके विरुद्ध कई केसेस दर्ज है और 25-30 केसेस में उनका नाम है जो हिंसा हुई है सहारनपुर में। तो हम लोग इनकी तलाश में थे और पुलिस इनको ढूंढ रही थी, तब से ये भागे हुए थे, कभी दिल्ली में कभी इधर कभी उधर। तो इनको आज सुबह 10 बजे डलहौजी डिस्ट्रिक्ट चंबा में गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके पुलिस वहाँ पे थाने की पुलिस ने इनकी एंट्री करा के, तो विधिवत तरीका होता है लोकल पुलिस को दिखा करके और बता करके कि वांटेड है केस, और उनको सहारनपुर दे दिया गया।
आनंद कुमार का कहना था कि चंद्रशेखर डलहौजी के एक होटल में थे जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया।
ये डलहौजी के एक प्राइवेट होटल में रुके हुए थे जो जानकारी हमें, और वहां छुपे हुए थे। पूरी होटल का नाम तो मेरे पास इस समय नहीं है, लेकिन डलहौजी में थे और हमारी टीम इनके पीछे लगी थी। तो हमारी पुलिस टीमों को जब सूचना हो गई कि यहां पर है और यहां छुपे हुए हैं, तो जब वो होटल से बाहर निकले, यहां रुके हुए थे, तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया।
सहारनपुर जिले के शबीरपुर गांव में 5 मई को दलितों ने शोभा यात्रा निकाल रहे ठाकुर समाज के लोगों पर हमला कर दिया था और इसकी वजह से हिंसा भड़क उठी थी। दोनों ओर से हमले और पथराव किए गए थे जिसमें ठाकुर समुदाय के एक युवक की मौत हो गई थी। इस मौत से गुस्साए लोगों ने दलितों के घर तोड़फोड़ और मारपीट की थी। इस घटना के बाद भीम आर्मी से जुड़े बड़ी संख्या में लोगों ने कई वाहनों को आग लगा दी थी। घटना को लेकर विरोधी दलों ने सरकार पर जमकर हमला बोला था और सड़क से लेकर विधानसभा तक में हंगामा किया था। यही नहीं, भीम आर्मी के लोगों और दलितों ने दिल्ली में भी प्रदर्शन किया था। घटना के बाद सहारनपुर के डीएम और एसएसपी हटा दिए गए थे। जानकारों का कहना है कि चंद्रशेखर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पर दूसरे समुदाय के लोगों की गिरफ्तारी का भी दबाव बढ़ेगा, अन्यथा स्थिति बिगड़ भी सकती है। इस मामले पर लगातार नजर रख रहे सामाजिक कार्यकर्ता और मेरठ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सतीश प्रकाश कहते हैं,
अभी कोई भी बात कहना थोड़ा जल्दी होगी। थोड़ा सा ये है कि अभी जो है ना, ये अनऑर्गेनाइज था मामला, क्योंकि अनऑर्गेनाइज चीजें जो है ना जल्दी पैदा होती है, खत्म भी जल्दी हो जाती है। भीम आर्मी जो है ऑर्गेनाइज सिस्टम है और अनऑर्गेनाइज सिस्टम में ये है कि जो आदमी उसको कह रहा है दो या चार आदमी के सिस्टम से बाहर निकलते ही मूवमेंट थोड़ा हल्का हो जाता है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि इतने दलितों में जो बीजेपी की सरकार है उसके खिलाफ आक्रोश लगता है, जिन दलितों को गिरफ्तार किया है उसकी रेसों में अगर जो दूसरी जाति के जो दबंग लोग हैं अगर वो गिरफ्तार नहीं होते और ये दलितों को दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर कोई अलग रूप आएगा।
बहरहाल पुलिस शुक्रवार को चंद्रशेखर को सहारनपुर की कोर्ट में पेश करेगी और फिर कोर्ट की अनुमति के बाद उनसे पूछताछ करेगी। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और अब आपको बताते हैं कि इस बार BBC इंडिया बोल में क्या होने वाला है।
BBC इंडिया बोल।
दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर IAS की परीक्षा पास करने वाली उम्मुल खैर।
बहुत आसान नहीं था मेरा सफर। आप भी जानना चाहेंगे UPSC में कामयाबी की क्या कुंजी है? BBC हिंदी रेडियो के नौजवान श्रोताओं को बताऊंगी अपने संघर्ष और सफलता की कहानी। मैं उम्मुल खैर।
इस शनिवार 10 जून को शाम 7:30 बजे BBC इंडिया बोल में। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 या फिर 1811-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबर। ब्रिटेन में नई सरकार के गठन के लिए मतदान जारी है। ब्रिटिश संसद की 650 सीटों के लिए ये चुनाव हो रहे हैं। ज्यादातर पोलिंग बूथ स्कूलों, कम्युनिटी सेंटर्स और सामुदायिक भवनों में बनाए गए हैं। और जानकारी के लिए सीधे चलते हैं लंदन BBC संवाददाता विनीत खरे के पास, जो कि कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। विनीत, बताएं हमारे श्रोताओं को कि किस तरह से वोटिंग हो रही है।
मोहनलाल, जब आप मुझसे बात कर रहे हैं और इस वक्त वोटिंग जारी है यहाँ पूरे ब्रिटेन में, करीब 40,000 पोलिंग बूथ हैं, उनमें वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और रात 10 बजे तक चलेगी। करीब 4.7 करोड़ लोग यानी करीब 5 करोड़ लोग वोट डालने के लिए योग्य हैं, जिनमें समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक करीब 15 लाख भारतीय मूल के वोटर होंगे। 3,300 करीब 3,300 से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 974 महिला उम्मीदवार हैं। कुल 650 सीटों के लिए आज मतदान हो रहे हैं और अगर किसी पार्टी को 326 सीटें मिलेंगी तो वो जीत जाएगी। इस कैंपेन में क्या मुद्दे हैं इन पर हम आपसे बात नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ ऐसा करना इस पर पाबंदी है, लेकिन जैसे ही वोटिंग खत्म होगी वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और माना जा रहा है कि करीब 5 बजे सुबह भारतीय समय अनुसार कल ये स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन जीतेगा और पहले नतीजे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज रात 12 बजे तक, 11 बजे से।
तो मतलब आज जैसे ही वोटिंग खत्म होगी उसके बाद मतगणना का काम शुरू हो जाएगा और उम्मीद कर रहे हैं कि देर रात तक कुछ चुनाव परिणाम,
देर रात तक हमें थोड़े इंडिकेशंस मिलने शुरू हो जाएंगे कि हवा किस तरफ बह रही है और सुबह तक कहा जा रहा है सुबह भारतीय अनुसार 3 या 4 बजे तक एक एक ब्रॉड आइडिया लग जाएगा कि कौन जीत की तरफ जा रहा है।
तो हम अपने श्रोताओं को बता दें कि यानी कि कल जब हम सुबह नमस्कार भारत कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे तो एक तस्वीर हमारे सामने होगी कि ब्रिटिश इलेक्शन में यानी कि ब्रिटेन में जो मतदान हुआ उसकी तस्वीर क्या उभर रही है। विनीत, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और यहां पर श्रोताओं को अब हम सुनाते हैं कि वो क्या कहते हैं हमारे कार्यक्रमों के बारे में।
आपकी राय, आपकी राय में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंदु पांडे और आज मेरे साथ हैं,
नमस्कार, राजेश प्रियदर्शी की ओर से।
तो राजेश जी, चिट्ठियों का सिलसिला शुरू करते हैं और हमारे पास ये चिट्ठी आई है सुनील शर्मा की, बाड़मेर से। लिखते हैं कि नमस्कार, आज नमस्कार भारत कार्यक्रम में समाचार वाचक द्वारा पाकिस्तान की श्रीलंका पर चैंपियंस ट्रॉफी में जीत का समाचार सुनकर आश्चर्य हुआ, जबकि पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था और आज भारत और श्रीलंका के बीच मैच हो रहा है।
बिल्कुल सही बात है कि आज भारत और श्रीलंका के बीच मैच हो रहा है और ये भी सही है कि हमसे गलती हुई है और हमारे जो कार्यक्रम में ये जानकारी दी गई वो गलत जानकारी थी, वो किसी भ्रम की वजह से हुआ होगा जिसकी हम कोई सफाई नहीं दे रहे। हम आपसे बिना शर्त माफ़ी चाहते हैं इस गलती के लिए और आप जैसे जागरूक हमारे श्रोता हैं जो हमारी गलतियों को अक्सर पकड़ते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं, जिनसे ये गलती हुई है उनको भी हम ये ज़रूर बता देंगे ताकि आगे से हम इसका ख्याल रखें।
और इस तरफ हमारा ध्यान दिलाया है अखिलेश शर्मा ने भी।
जी,
ये हैं हमारे रेगुलर श्रोता जंग बहादुर
जंग बहादुर सिंह, गोल पहाड़ी, जमशेदपुर।
जी लिखते हैं कि विदित मेहरा जी का इंग्लैंड का भारत यानी कि साउथ हॉल दौरा वृतांत दिनांक 5 जून को दोनों सभाओं में प्रसारित किया गया, सुनकर लगा कि वाकई वो सही मायने में भारत है।
साउथ हॉल वाकई बहुत ही मजेदार जगह है, जहां पर कि आपको पंजाबी में लिखे हुए साइन बोर्ड दिखाई देंगे और जलेबी की दुकानें और समोसे और लोग खाने पीने की चीज़ें। वो एक छोटा सा इलाका है, लेकिन वाकई यहाँ पर हर भारतीय चीज़ जो आपको भारत में मिलती है वह मिल जाती है। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा था कि मैंने वहाँ पर नीम के दातून बिकते भी देखे।
अरे वाह। और दूसरा हमारे पास, ये भी हमारे नियमित श्रोता हैं एहसान असगर साहब महाराष्ट्र से, इन्होंने लिखा है कि
बुल्ढाना से।
जी बुल्ढाना से लिखते हैं कि इस बार इंडिया बोल में मलय नीरव जी, भाषा उनकी कुछ पसंद नहीं आई, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो खेल पत्रकार हैं। बीबीसी से रिश्ता उनका रह चुका था, लग रहा था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं।
वो कार्यक्रम मैंने सुना नहीं, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मलय अपने जो खेलों का प्रसारण है उसके लिए काफ़ी जाने जाते हैं, काफ़ी दिलचस्प तरीके से वो खेलों की बात करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि वो विषय क्या था और वो क्या कह रहे थे जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा।
और आगे लिखते हैं कि बीबीसी के ऐप से कोई भी रेडियो कार्यक्रम प्ले नहीं हो रहा, ये तो टेक्निकल चीज़ें
जी, एक तकनीकी समस्या है जिसकी हमें जानकारी है और हम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।
और ये हैं गणेश प्रसाद हौजदार, मध्य प्रदेश के आंदोलित किसानों पर गोली चलाकर पुलिस वालों ने जो नीच हरकत दिखाई है वो बिल्कुल निंदनीय है, और दुनिया जहां में कतर संकट की कहानी को सुना, इससे भारतीय और अन्य विदेशी कामदारों पर संकट पड़ सकता है, ये बहुत अच्छा लगा दुनिया जहां जो इस बार का हुआ था। और इसके अलावा बीबीसी की पूरी टीम को नमस्कार भेजा जा है मांगी किचर ने राजस्थान से,
बहुत बहुत शुक्रिया, और हम सब की तरफ से हमारे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और हमारी शुभकामनाएं।
ये विनती करते हैं कि राजस्थान से भी आप रिपोर्ट सुनाएं तो अच्छा रहेगा।
जी बिल्कुल, जब राजस्थान में ऐसी कोई बात होती है तो हम जरूर उसको रिपोर्ट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, राजस्थान में हमारे बहुत सारे श्रोता हैं।
जी, और दुनिया जहान बहुत अच्छा लगा अर्जुन दान चारण कर्मावास बाड़मेर से, इन्होंने ये हमें मेल भेजा है तो इन्हें भी बहुत पसंद आया है। द्वारका गुजरात से मार्खी चावड़ा ने लिखा है, लिखते हैं कि मैं बीबीसी 10 साल से सुन रहा हूं और कल bbc.com पर दुआ और सौम्या का खत पढ़ा और उनके विचार को सही मान लेती, क्या ये वही बीबीसी है जिसे मैं जानता हूं? मतलब ये शायद कुछ इनका मतभेद है कि जो भी खबरें हो रही हैं
इसके बारे में मैं ज़रूर आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये बहुत ही एक दिलचस्प कोशिश है हमारी ये समझने की, ये जानने की कि कश्मीर में रहने वाली लड़कियाँ, स्कूल कॉलेज में जाने वाली जो लड़कियाँ हैं उनके दिलों में क्या गुजरती है, वो क्या सोचती हैं, और हमने सोचा कि इसका सबसे अच्छा तरीका शायद यही होगा कि उनकी हम उम्र लड़की कोई उनसे बात करे, और ये बात हमने कोशिश की कि वो पत्रों के माध्यम से हो। तो ये दोनों लड़कियां एक दूसरे को चिट्ठियां लिख रही हैं, सौम्या जो दिल्ली में रहती हैं उनके कुछ सवाल हैं, और जो दुआ हैं कश्मीर में वो जवाब भी देती हैं और उनके भी कुछ सवाल हैं। तो एक तरह से ये जो कम उम्र की जो लड़कियां हैं और ख़ास तौर पे जो कश्मीर की लड़की है उसके जहन में क्या चल रहा है, इसको समझने और समझाने की कोशिश है। मुझे नहीं मालूम कि आपको इसमें क्या बुरा लगा या आपको क्या एतराज़ है इस पर, लेकिन अब मुझे लगता है कि समय
जी
खत्म हो रहा है, तो
अब पता बता देना चाहिए।
जी, जल्दी से मैं पता बता देता हूँ। अगर आप डाक से हमें चिट्ठी लिखना चाहें तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप हमें ईमेल लिखना चाहें तो हमारा पता वही है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
तो कार्यक्रम में आपने अपनी चिट्ठियां सुन ली, और अब कार्यक्रम में खेल की खबरें। तो आज भारत की ओर से पहली बड़ी खबर यह है कि रोहन बोपन्ना ने फ्रेंच ओपन का मिक्स डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारत के रोहन बोपन्ना और कनाडा की गैब्रिएला ड्रावोस्की की जोड़ी ने आज फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट के मिक्स डबल्स का खिताब जीता। ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले बोपन्ना लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा के बाद चौथे भारतीय हैं, और इस जोड़ी ने टूर्नामेंट के फाइनल में कोलंबिया की रॉबर्ट फारा और जर्मनी की लीना की जोड़ी को 2-6, 6-2, 12-10 से शिकस्त दी। 2010 के बाद बोपन्ना दूसरी बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे थे। उनकी जीत पर राखी शर्मा ने बात की भारत के पूर्व डेविस कप खिलाड़ी और कोच अख्तर अली से।
देखिए, बहुत खुशी की बात है क्योंकि लिएंडर पेस और भूपति के बाद में रोहन बोपन्ना वाज ऑलवेज कमिंग थर्ड बेस्ट प्लेयर इन द कंट्री और वो बहुत मेहनत करके आज के जिस लेवल में पहुंचे हैं बहुत ही खुशी की बात है। बिकॉज प्लेइंग वेरी वेल, जिसको कहते हैं ट्रैवलिंग है, ऑल दोस है, तो रोहन के परफॉर्मेंस वेरी गुड क्योंकि लास्ट सेट में टाई ब्रेकर में बहुत डेंजर हो गया था। कौन जीतेगा ये यूगनर से? 3 लव की लीड थी हमारी, बट फिर वही हुआ, ड्यूसी हुआ, 3 ऑल हुआ, 9 ऑल हुआ, 10-9 में वो लड़की प्लेयर थी परा वो चौक कर गई, वो जो हम लोग टेनिस वर्ल्ड बोलते हैं चौक कर गई, घबरा करके डबल फॉल्ट मार दिया, जिससे मैच हम लोग जीत गए। बहुत खुशी की बात है क्योंकि देश में प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स हैव टू कम अप मच फास्टर। ऑल दिस टॉप प्लेयर्स हैव लॉस्ट देयर फॉर्म और दे नॉट गेटिंग, यू नो, दे आर गेटिंग ओल्ड, दे नॉट एबल टू गेट इनटू बिग टूर्नामेंट। तो ये सब बड़े टूर्नामेंट वगैरह खेलने के लिए यंगर प्लेयर होना, हमारे यहाँ यंगर प्लेयर हैं, बट जो उनका जो खेल है वो एक लेवल तक 15,000 25,000 के बाद जब 100,000 200,000 होता है वहाँ वो मैच नहीं कर पाते हैं। ये जो जगह से इम्प्रूव करना होगा देश के प्लेयर लोगों को।
अख्तर सर, रोहन बोपन्ना के खेलने के स्टाइल के बारे में आप क्या कहेंगे और अब यहाँ से उनका करियर आप कितना लंबा देखते हैं?
देखिए, रोहन हमेशा थोड़ा, हम लोग टेनिस वर्ल्ड में बोलते, टाइट रहता है। ही इज लाइक दैट, यू नो, ही इज टेंस अप लिटिल, बट व्हेन ही गेट्स गोइंग, जिसको कहते हैं मारने लगता है तो फिर सब अंदर मीन ही इज नॉट गोइंग टू लूज। बिग सर्व है इंडिया में, ही इज गॉट वन बिग सर्व। इंडिया में बहुत कम लोगों को सर्व बड़ी है क्योंकि हिंदुस्तान में टैक्स जो सर्विस होती है वो कोचेस सिखाते नहीं ठीक से, थोड़ा स्लोली ग्रेजुअली बाय द टाइम 16-17 हो जाता है उनकी बैड हैबिट फॉर्म हो जाती है। तो मगर बोपन्ना लाइक यंग एज से मैंने देखा उसको 14-15 वर्ष से ऑलवेज सर्व लाइक दैट, यू नो, बहुत अच्छे सर्व, हैवी सर्व है जिसको कहते हैं, और देश के लिए बहुत अच्छी बात है कम से कम मिक्स डबल भी तो आया ग्रैंड स्लैम, वरना ग्रैंड स्लैम जीतना कोई चीज़ किसी गेम में इज वेरी टफ होता है। तो हमें बहुत खुशी है, देश के लोगों को खुशी होना चाहिए कि रोहन बोपन्ना भी यंग नहीं है बट डबल्स के लिए ठीक है। अगर आप डबल्स के लिए ठीक है तो और भी, क्योंकि डबल्स से मिक्स डबल्स खेलते हैं, सिंगल खेलते नहीं कभी कभी, तो उनके लिए इज गुड परफॉर्मेंस जिसको बोलते हैं, बहुत खुशी की बात है। लिएंडर पेस वगैरह परफॉर्म नहीं कर पाए, इतना वो लोग ने दिया, वो बत्ती लिएंडर के बाद ही में बोपन्ना है आज, तो ये देश की बड़ी खुशी की बात है।
तो रोहन बोपन्ना ने फ्रेंच ओपन मिक्स का खिताब जीत लिया है और अब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, जिसमें कि आज भारत का मुकाबला श्रीलंका की टीम से हो रहा है। राखी शर्मा मौजूद हैं। राखी, पहले क्या स्कोर चल रहा है?
जी, कैनिंगटन ओवल के मैदान पर ये जो मुकाबला खेला जा रहा है, फिलहाल श्रीलंका बल्लेबाजी कर रही है और 9 ओवर का खेल हो चुका है। एक विकेट खोकर उसने 38 रन बना लिए हैं। क्रीज पर मौजूद हैं गुनाथल का जो 22 रन बनाकर खेल रहे हैं, साथ ही हैं कुसाल मेंडल्स जो 8 रन पर नाबाद हैं। श्रीलंका का पहला विकेट निरोशन डिकवेला के रूप में गिरा जिन्होंने 7 रन का योगदान दिया। इन्हें भुवनेश्वर कुमार ने आउट किया। इससे पहले भारत ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 322 रन की चुनौती रखी है। 50 ओवर की अपनी पारी में भारत ने 6 विकेट गंवाए। भारतीय पारी में सबसे अहम योगदान शिखर धवन ने दिया जिनके बल्ले से 125 रन निकले। शिखर का ये 10वां वनडे शतक है। इसके अलावा सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 78 और MS धोनी ने 63 रनों की महत्वपूर्ण पारियां।
आज महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है।
बिल्कुल, उनकी तरफ से 63 रन की जिस तरह से पारी खेली गई है, लेकिन विराट कोहली कप्तान ने थोड़ा सा निराश किया है। वो बिना खाता खोले आज पवेलियन लौटे। श्रीलंका के गेंदबाजों का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा। 10 ओवर की गेंदबाजी में लसित मलिंगा ने 70 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि सुरंगा लखमल, एन प्रदीप, थिसारा परेरा और असेला गुणरत्ना को 1-1 विकेट मिला है। भारतीय टीम के लिहाज से आज का मुकाबला अहम है क्योंकि आज मैच जीत लेती है तो सेमीफाइनल में प्रवेश कर लेगी।
और इस समय श्रीलंका की टीम खेल रही है और अब स्कोरबोर्ड पर नजर देखनी पड़ेगी कि आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया राखी शर्मा। और इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसान आंदोलन में पुलिस की गोलियों से मारे गए किसानों के परिवारों से राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर कांग्रेस उपाध्यक्ष मिलने पहुंचे। म्यांमार के रक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि कल सेना का विमान क्रैश हुआ था जिसमें सवार लोगों में से 29 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। कतर के विदेश मंत्री ने कहा कि कतर और सऊदी अरब समेत अन्य अरब देशों के बीच तनाव पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि कतर कूटनीतिक हल के पक्ष में नहीं के पक्ष में है, सैन्य हल के पक्ष में नहीं है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें और इस दौरान bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है। नमस्कार।